समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट शगुन।
हेलो एंड गुड आफ्टरनून, वेलकम अलोंग लिसनर्स टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम शगुन चोपड़ा एंड विद मी टुडे इज आकर्षिता एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज। वी विल डिस्कस अबाउट नेशनल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट्स इन आवर सेगमेंट डेटलाइन इंडिया। वी ऑल्सो हैव रिपोर्ट्स, बिजनेस न्यूज, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स, ऑल ऑफ दिस एंड मच मोर इज कमिंग इन द नेक्स्ट 30 मिनट्स, सो टर्न अप द वॉल्यूम ऑफ द रेडियो। वील टेक अ लुक एट द हेडलाइंस फर्स्ट। Center moves Waqf Amendment Bill 2024 for introduction in Lok Sabha. Opposition parties raise objections over the bill.
भारत और न्यूजीलैंड ने व्यापार सुगमता के लिए सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए।
RBI keeps repo rate unchanged at 6.5% for 9th time in the row, retains GDP growth rate projection at 7.2% for current financial year.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को केरल के कन्नूर और वायनाड जिलों में भूस्खलन से प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे।
नोबेल लॉरेट प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस टू टेक ओथ एज हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट इन बांग्लादेश टुनाइट।
और पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद पहलवान विनेश फोगाट ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज शाम कांस्य पदक के लिए स्पेन से खेलेगी।
And now we will take a look at the developments taking place at national and global level in our segment Dateline India. And today we will talk about the weather in general and International Cat Day. Of course, beginning our discussion with International Cat Day. The original festivities.
चलते हैं, चलते हैं।
बरसो मेघ और जल बरसो, इतना बरसो तुम, जितने में मौसम लहराए उतना बरसो तुम। बरसो प्यारे धान पान में, बरसो आंगन में, फूला नहीं समाये सावन मन के दर्पण में, बरसो मेघ और जल बरसो। सबके मन में बारिश का नाम सुनते ही खुशी की लहर सी दौड़ पड़ती है। बारिश के दिन एक अलग ही नजारा होता है, मौसम एकदम साफ और सुहाना हो जाता है, इसलिए लोग बेसब्री से इस मौसम का इंतजार करते हैं। ये ऋतु हमारे कुछ पसंदीदा त्योहारों के उत्सवों का भी प्रतीक है, जैसा कि रक्षाबंधन, 15 अगस्त, हरियाली तीज और भी बहुत कुछ। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी दिल्ली समेत राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, महाराष्ट्र आदि राज्यों में भीषण बारिश होने की संभावना है। कई स्थानों पर हल्की तो कई स्थानों पर तेज बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहीं बारिश से लोगों के चेहरे खिले नजर आ रहे हैं तो वहीं कहीं कुछ स्थानों पर नदियों में उफान के कारण बाढ़ जैसी स्थिति है। इस बीच मौसम विभाग ने पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
And of course, India Meteorological Department, IMD, has forecast light to moderate rainfall lightning over east, west, central, northwest and northeast regions of the country during the whole week. IMD said heavy rainfall is likely over Himachal Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan, Uttar Pradesh, Punjab, Haryana and Jammu Kashmir till Saturday. The weather agency has forecast scattered to fairly widespread light to moderate rainfall for south peninsular regions of the country during the next 5 days. Heavy rainfall is very likely over coastal Karnataka today. IMD said that a cyclonic circulation lies over Jharkhand, adjoining North Odisha, Chhattisgarh in lower and middle tropospheric levels, tilting southwestwards with heights. Meanwhile, some parts of Delhi also witnessed very light rainfall last evening and temperatures were recorded as 33 degrees Celsius maximum and 25 degrees minimum. Light rainfall has also been predicted in Delhi today.
लंबे वीकेंड्स आ रहे हैं तो इसलिए अगर आप छुट्टियों पर जाने की सोच रहे हैं तो कृपया सावधान रहें। जिस स्थान पर आप जाने की योजना बना रहे हैं वहां के मौसम की जांच करना ना भूलें, क्योंकि अभी भी भारत के कई राज्यों में भूस्खलन जैसी समस्या, भारी बारिश के कारण, और भी कई ऐसे हमारे जगह हैं शगुन जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, और साउथ में कई ऐसे कन्नूर है जो है बारिश के मौसम में लोग वहां जाना पसंद करते हैं, लेकिन अभी वहां पे हालात ठीक नहीं है, इसलिए आप जांच परख के ही जाएं।
Despite enjoying the rainy season, there are some precautions that can be followed during the monsoon to stay healthy and also keep infections at bay while enjoying the rains, of course.
जी हाँ, अगर आपने मौसम की जांच परख कर ली है जहां आप जाने वाले हैं तो कुछ निर्देश हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। जैसे कि आप जहां भी जा रहे हैं वहां पे साफ और उबला हुआ पानी पिए मॉनसून के दौरान, क्योंकि जल स्रोत दूषित हो सकते हैं, इससे जल जनित बीमारियों के होने की संभावना बढ़ जाती है। इस मौसम में पेट की समस्या, बुखार जैसे आम स्वास्थ्य समस्याओं में कुछ हैं, तो घर में पानी का फिल्टर होना जरूरी है या फिर रोजाना पीने के लिए पानी को पारंपरिक रूप से उबाला भी जा सकता है। जब भी आप यात्रा करें तो पीने का पानी साथ रखें, इससे आप जहां घूमने जा रहे हैं वहां पर कचरा फैलाने से बचेंगे और उस जगह की प्राकृतिक सुंदरता को भी बनाए रखेंगे, है ना शगुन? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जो भी टूरिस्ट स्पेसेस होते हैं वहां पे इतने कूड़े कचरे जो है, क्योंकि हम अपना पीने का पानी, अपना बॉटल साथ में नहीं लेके चलते हैं, तो हम फिर वो रीयूजेबल बॉटल लेके चलते हैं और फिर फेंक देते हैं, तो हमें ऐसी चीजों से बचना चाहिए।
वी शुड ऑल्सो यूज वाटर प्रूफ बैग्स और कवर्स टू प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक्स, important documents whenever we are traveling and other belongings from getting wet. Ziploc bags can also come in handy for keeping smaller items dry, right?
जी, और भले ही बारिश हो रही है लेकिन जरूरी नहीं कि बारिश का मौसम है तो आपको आप ज्यादा पानी ना पिए, क्योंकि जो पानी की मात्रा है जो हमारे शरीर को आवश्यकता होती है वो तो हम उतना लेते हैं, इसलिए पानी पीते रहें, ठीक है?
And we should also use insect repellent. The monsoon season, which brings along an increase of mosquitoes and other insects, so we should always apply insect repellent to protect ourselves from mosquito bites and carry nets or screens if necessary. Also, we should plan the transportation wisely. We should be prepared for the delays or disruptions in transportation because, as we have seen during heavy rainfalls, this generally happens. And at some places also they might experience flooding. So we can consider alternative routes and modes of transport if necessary. It's advisable to book our accommodation and travel arrangements well in advance.
और मॉनसून के दौरान डेंगू, मलेरिया और हैजा जैसी जलजनित बीमारियों का खतरा अधिक होता है, इसलिए अनुपचारित पानी पीने और बिना पका हुआ पानी या स्ट्रीट फूड खाने से बचें, और जहां भी जल जमाव है, जैसे हमारे घर में बहुत सारी ऐसी जगह रहती है जैसे कि कूलर है या कुछ भी ऐसा बॉटल है जहां पे पानी पड़ा हुआ है ऐसे ही बहुत दिनों से, तो ऐसे स्थानों पर पानी इकट्ठा होने से बचे, ऐसे स्थानों से जो है परहेज करें पानी का रखना, और जहां तक हो सके वहां तक ऐसे कपड़े पहने जो जल्दी सूख सके, क्योंकि जितनी भी आर्द्र परिस्थिति होती है ये हमारे लिए अनुपयुक्त होती है, तो बारिश से खुद को बचाने के लिए एक अच्छा रेनकोट या वाटरप्रूफ जैकेट भी आप साथ रखें। वाटरप्रूफ जूते या सैंडल पैक करना ना भूलें अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं।
वेर एवर वी आर ट्रेवलिंग, वेन एवर वी आर गोइंग टू ऑफिस फॉर आवर वर्क एंड एट वेरियस प्लेसेस, वी शुड ऑलवेज कैरी, इन दिस पर्टिकुलर सीजन वी शुड डेफिनेटली कैरी अम्ब्रेलाज विद अस, दिस इज अ मैंडेट, राइट? This should be mandatory, and we should, in this particular season, I know this may be a little difficult for some people, but we should avoid street food and junk food at least during the monsoons, because many hawkers who sell popular street food and even freshly cut fruits, they are stored in open, so it is best to avoid such foods as they are kept in the open and are vulnerable to harmful microorganisms. The longer these foods are exposed to the open air, the higher the chances are of contracting infections if you consume them.
और बार बार बारिश में भीगने से बचें। ये कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल भी नहीं। जी हाँ, अगर आप रेनकोट अपने साथ में रखते हैं ऐसी चीजें तो आप भीगने से छाता रख सकते हैं जब भी आप ऑफिस जाते हैं, और घर के आसपास अपने पानी जमा ना होने दें, और सबसे बड़ी बात कि फिसलन वाली सतहों से सावधान रहें क्योंकि बारिश में अक्सर हम गिर जाते हैं या जो है गीले फर्श या सीढ़ी होती है या उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं। और सबसे जरूरी बात कि अगर बारिश का मौसम है और जैसे मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं इस मौसम में, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने घर में जो है कॉइल का यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें आती हैं जिससे आप मच्छर जनित बीमारियों से बच सकते हैं।
And listeners, let me also tell you that today it's the International Cat Day. The original festivities for International Cat Day were put together for the first time in the year 2002. So we are going back in history by IFAW, the International Fund for Animal Welfare, along with other animal rights groups who joined in to celebrate. This was declared to be the day to appreciate and honor one of the most popular pets on the planet. An estimated 500 million cats are thought to be frolicking in neighbors or gardens across the world, which means that almost every extended family is bound to have an aunt with more kittens than former husbands, no matter the country or the climate.
इसी के साथ ही International Cat Day की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और समय है अब अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
Well, these days we often find news of the water crisis in today's world in newspapers and other media. It has reflected the requirement of conservation of water, especially rainwater, to meet the ever-increasing demands of water in our day-to-day life. Experts commented that rainwater harvesting can provide up to 70% of the water needs for a household, and the system can help to reduce water pollution and flooding.
Rainwater harvesting and conservation is the activity of direct collection of rainwater. The rainwater so collected can be stored for direct use or can be recharged into groundwater. In Manipur, the Lunghar village of Ukhrul district, a remote village around 110 km far away from capital city Imphal, has become a role model in rainwater harvesting. Saving rainwater is one of the primary objectives of this village since the villagers got into the habit of rainwater harvesting after the State Directorate of Environment and Climate Change took up a pilot project on spring rejuvenation in the village in 2021. Every household collected the roof water during the rainy season with the help of a gutter and diverted it to the pits they dug so that the water flow underground rather than let it flow away as runoff. This system has increased the water volume of the springs as witnessed in the lean season of the past 2 years. The villagers found this project not only beneficial in rejuvenating springs but consider it as a livelihood sustenance project. Speaking to Akashvani Samachar exclusively, the village headman of Lunghar village said that the rainwater harvesting and spring rejuvenation project has become a livelihood sustenance project for the villagers. He said,
My name is Mathaisang Lungharwo. I am the village headman of Lunghar village. The Directorate of Environment and Climate Change, Government of Manipur took up a project in my village to develop the springs, maintain the water level in springs in aim to provide uninterrupted water supply to the villagers. The project has not only provided abundant water to the villagers throughout the years but also helped in our livelihood.
The human body needs water for day-to-day survival. We may be able to survive without any food for a whole week, but we won't even survive for 3 days without water. Moreover, water is at the core of sustainable development and is critical for social economic development, energy, food production, and a healthy ecosystem that serves as the crucial link between society and the environment. Therefore, we all should promote rainwater harvesting in the present days. JJ Thaksom, Akashvani News Parikrama, Imphal.
आज मैं अपने सुनने वालों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज बताने वाली हूँ शगुन। क्या आपको पता है कि सिर्फ आप एक पौधे से डेंगू और चिकनगुनिया से बच सकते हैं? जी हाँ, डेंगू और चिकनगुनिया को अब एजोला मॉस्किटो फर्न इस दुर्लभ पौधे से दूर रखा जा सकता है। नागपुर में किए गए संशोधन में आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट।
मानसून में मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी जानलेवा बीमारियां फैलती है। फिलहाल नागपुर शहर में डेंगू और चिकनगुनिया का संक्रमण तेज है। इस समस्या पर नागपुर विश्वविद्यालय और अर्जुनी मोरगांव के एसएस जायसवाल कॉलेज ने समाधान ढूंढ लिया है। इन्होंने एजोला मॉस्किटो फर्न इस दुर्लभ पौधे से मच्छर नियंत्रण पर अनुसंधान किया है। इस अनुसंधान से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मच्छरों के प्रकोप पर नियंत्रण कर डेंगू चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियों का फैलाव कम करना संभव होगा। यह संशोधन किस प्रकार से उपयुक्त साबित होगा जानते हैं संशोधनकर्ता टीम में से डॉक्टर ढोबले से।
मैं डॉक्टर संजय जानराव ढोबले, मैं राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के भौतिक शास्त्र विभाग में वरिष्ठ प्राध्यापक हूँ और मेरे साथ में अर्जुनी मोरगांव स्थित एसएस महाविद्यालय के सूक्ष्म जीव शास्त्र विभाग प्रमुख डॉक्टर शरद देशमुख सर, इन दोनों ने मिलकर हमने मच्छरों से होने वाले रोगों को रोकने के लिए मच्छरों को कैसा रोका जाए, मच्छरों का प्रजनन कैसा रोका जाए, इसमें हमने काम किया। इसलिए हमने एक दुर्लभ वनस्पति है जो ओजोला, उस पर हमने काम किया। ओजोला पे काम करते समय हमें ऐसा मिला कि ओजोला वनस्पति को घर में लगाया जाए तो मच्छरों की पैदावार को नियंत्रित किया जा सकता है। जमा पानी में वनस्पति लगाने से मच्छर नहीं फैलते और ये पानी पे फ्लोटिंग होती है और ये ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, जिसके कारण पानी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहे और ऑक्सीजन कम रहे तो मच्छरों के जो अंडे है या लार्वा है उसके कारण वो मर जाता है। इस कारण मच्छर फिर से पैदा नहीं होता, मच्छर का प्रजनन रोका जा सकता है। एजोला में मच्छरों की क्षमता और प्लाजोडियम के प्रसार को रोकने के लिए शक्ति है, इसलिए एजोला को मॉस्किटो फॉर्म भी कहा जाता है। एजोला का पूर्ण आवरण क्यूलेस मच्छरों को अंडे देने से रोक सकता है और एजोला शहर और गांव में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी बीमारी को रोका जा सकता है। इसलिए मुझे सभी जनता से विनती है कि वो अपने घर में एजोला जैसी वनस्पति लगाकर मच्छरों का प्रजनन रोका जाए और हमें इस रोगों से मुक्ति मिले।
परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी।
From Nagpur, let's take you to Ahmedabad. As the monsoon has graced Gujarat with its life-giving rains, cities in the state are buzzing with a surge of green energy. To transform this green energy into green growth, the Ahmedabad Municipal Corporation has launched Mission 3 Million Trees. This is a bold step towards environmental conservation by pledging to plant 3 million trees in just 100 days. Inspired by the Prime Minister's heartfelt call of Ek Ped Ma Ke Naam, to plant a tree in honor of our mothers, this ambitious drive has already seen over 2 million trees planted in just 45 days. We have a report from our correspondent.
Ahmedabad is turning its monsoon dreams into green reality. Launched on 5th June 2024 by Chief Minister Bhupendra Patel, the ambitious Mission 3 Million Tree initiative aims to enhance the green cover of the city. It also symbolizes the commitment of local body to environmental conservation and sustainable development. Talking to Akashvani, Deputy Municipal Commissioner of Ahmedabad Municipal Corporation, Dev Chaudhary, said the mission aims to enhance the green cover of the city up to 6-8%.
प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ किए गए आह्वान एक पेड़ माँ के नाम के इस प्रेरणा से ही अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मिशन 3 मिलियन ट्री लॉन्च किया। इस मिशन का उद्देश्य शहर के 7 जोन और 48 वार्ड्स में 30 लाख जैसे प्लांटेशन का रहा है, जिसमें अभी तक कॉरपोरेशन ने 20 लाख से ज्यादा पेड़ लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। कॉरपोरेशन बगीचा डिपार्टमेंट के साथ साथ एजेंसीज के मार्फत भी मियावाकी प्लांटेशन करवाया जा रहा है, साथ साथ एनजीओ संस्थाएं, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के मार्फत भी लगभग 40 से ज्यादा प्लॉट्स में ये वृक्षारोपण करवाया जा रहा है। एक बार ये वृक्षारोपण लगने के बाद सिटी के जो ग्रीन कवर है उसमें लगभग 6-8% का इंक्रीज होगा, साथ साथ रोड साइड और सेंट्रोवर्ज में भी बड़ी अच्छी मात्रा में प्लांटेशन किया जा रहा है। शहर की सारी सोसाइटीज में लोगों को घर बैठे प्लांट मिल सके और वो प्लांटेशन कर सके, उसके लिए अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक पेड़ माँ के नाम वृक्ष रथ चालू किए हैं, जो हर वार्ड में जाके लोगों को जो है लोगों की रिक्वेस्ट एएमसी सेवा ऐप पे आती है, उसके फलस्वरूप वहां जाके वृक्षारोपण करके आते हैं। तो इस प्रकार से ये एक आयोजन है जिसमें 100 दिन में 30 लाख वृक्षों का लक्ष्यांक है, उसमें से 20 लाख का लक्ष्यांक हासिल किया जा चुका है और बाकी जो लक्ष्यांक लगभग आने वाले 10 से 15 दिन में वो भी हासिल कर लिया जाएगा।
The ambitious initiative by AMC is a praiseworthy step to ensure green and sustainable growth. For Parikrama, this is Aparna Khun, Akashvani News, Ahmedabad.
Now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
On 8th August 1942, the Quit India movement was launched at the Bombay session of the All India Congress Committee by Mahatma Gandhi, demanding an end to British rule in India.
After the failure of the Cripps mission to secure Indian support for the British war effort, the Congress Working Committee meeting held at Wardha on the 14th of July 1942 passed a resolution demanding complete independence from the British government. The draft proposed massive civil disobedience if the British did not accede to the demands.
On the 8th of August 1942, Mahatma Gandhi made a call to do or die in his Quit India speech delivered in Bombay at the Gwalior Tank Maidan. The All India Congress Committee launched a mass protest demanding what Gandhiji called an orderly British withdrawal from India. Soon, almost the entire leadership of the Indian National Congress was imprisoned without trial within hours of Gandhiji's speech.
Despite the arrest of the top nationalist leadership, large protests and demonstrations were held all over the country. Workers remained absent and strikes were called. In Tamluk and Kontai subdivisions of Midnapore, the people were successful in establishing parallel governments which continued to function until Gandhiji personally requested the leaders to disband in 1944. In Balia, Uttar Pradesh, people overthrew the district administration, released the arrested Congress leaders and established their own independent rule. In rural Bengal, the Quit India movement was fueled by peasants' resentment against the new taxes and the forced rice exports.
The British government came down heavily upon the people. It arrested over 10,000 people. The movement was successful in making the British realize that India was ungovernable in the long run, and the question for the post-war era became how to exit gracefully and peacefully, leading to India's independence on the 15th of August 1947.
We remember Gandhian freedom fighter Titus Thevarathundiyil, who died on the 8th of August 1980. A trusted friend of Gandhiji, he was one of the 78 marchers selected by Mahatma Gandhi to take part in the 1930 Dandi March.
Titus was born on the 18th of February 1905 in Maraman, Kerala, to Marthoma Syrian Christian family. He served as the governing secretary for Gandhiji's Sabarmati Ashram Milk Project near Ahmedabad. Gandhiji gave him the honorific of Titusji. On the 15th of March 1925, Mahatma Gandhi visited Titusji's house in Maraman on his way to Aranamuya. This was considered one of the greatest events in central Travancore. In and around Maraman, thousands witnessed his visit.
After independence, Titus settled in Bhopal. In 1970, he published the book, The Bharat of My Dreams. He was also represented in the early designs of the 500 rupee note. Titus Thevarathundiyil died on the 8th of August 1980 at the Kasturba Hospital in Bhopal.
We also remember the martyr Krishna Kumar, a resident of District Mainpuri, Uttar Pradesh. The 14-year-old took part in the Quit India movement as a school student and received severe bullet wounds in the police firing at a protest rally joined at Bevar on the 8th of August 1942. Krishna Kumar died on the spot along with two other protesters. The Amar Shaheed School at Mainpuri was later established to commemorate their martyrdom. AIR News salutes the brave sons of the soil.
That brings us to the end of this episode of Azadi Ka Safar.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। पेरिस ओलंपिक्स में आज रात मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा अपना खिताब बरकरार रखेंगे।
And now we will take you live to our correspondent Shaurya Chaudhary, who's in Paris. So, hello Shaurya, what are the latest updates from the ground?
So, the biggest news emerging right now is from the wrestling match, which has been in the news, as you know. And today it's for positive news. Aman Sarawat, he has made the semi-finals of the 57 kg event, and he'll be taking on a very tough opponent, Ariyuchi from Japan, who's the current world number 2 and silver medalist of the Rio Games. Sarawat has been fighting brilliantly from the morning. He's already won 2 bouts, and a semi-final win will ensure a silver medal for the Indian. The other wrestler in the fray, Anshu, she has lost her 57 kg bout. So all eyes on Aman right now. And he might ensure India's first wrestling medal after all the controversy from the last few days. And last day, specifically so. And as you rightly mentioned, Neeraj Chopra, all eyes will be on him. The Olympic and world champion, he qualified brilliantly. I was here present covering his qualification. He threw the best among the star-studded field, and he'll be in the final at night around 11:55 p.m. Indian time. So pretty late back there. And expectations are there for a medal from him. Of course, a gold medal from him. He's been in brilliant form. He's India's best athlete, of course, a legend already. And apart from that, in the hockey arena, India will be battling Spain a little while from now. And they'll be fighting for a bronze medal. They lost a semi-final to Germany narrowly. They were going great guns till that point. And that match also, they had their moments. But right now, all the focus on that bronze medal playoff. And both Neeraj and hockey team, they emerged triumphant today. 2 medals on the card.
Right. Thank you so much, Shore, for all the information. And now moving on to business news. Domestic benchmark indices Sensex and Nifty ended in the negative territory amid high volatility following the Reserve Bank of India's decision to keep interest rates unchanged. At close, the Sensex, which tracks 30 companies, was down 582 points or 0.73% at 78,886. Meanwhile, the Nifty 50 fell by 180 points or 0.74% at 24,117. The BSE Midcap Index was down 0.4% and Small Cap Index ended flat. और अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस. श्रोताओं, आज सबसे पहले हम याद कर रहे हैं अनुपम श्याम ओझा को. आज उनकी पुण्यतिथि है. वे भारतीय फिल्म व टेलीविजन कलाकार थे जो कि मुख्य तौर से हिंदी सिनेमा और टीवी जगत में सक्रिय रहे. अनुपम श्याम ने वैसे तो कई फिल्में और टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया, लेकिन उन्हें असली सफलता मिली साल 2009 में आए टीवी सीरियल मन की आवाज प्रतिज्ञा से. आइए सुनते हैं उनका ये डायलॉग.
के नामकरण का समय निकलने नहीं देंगे. चलिए प्रोफेसर साहब, यहीं से आपको नमस्कार. माता जी आपको भी. है बेटी आरुषि आशीर्वाद.
नैना जी नहीं दिख रहे.
अच्छा प्रोफेसर साहब, हमारे ठाकुर सज्जन सिंह.
Well, today we're also remembering writer Shirley Jackson. She's known primarily for her works of horror and mystery. Her writing career spanned over 2 decades, during which she composed novels and more than 200 short stories. Now talking about some of her works, The Lottery, The Haunting of Hill House, Charles, The Witch, The Summer People, Dark Tales, and The Bird's Nest are some of her works. आज भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका सिद्धेश्वरी देवी की जयंती है. उन्हें निर्विवाद रूप से ठुमरी गायन की साम्राज्ञी मान लिया जा गया है और उन्हें भारत सरकार द्वारा 1966 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया. आइए सुनते हैं उनका ये गीत. Today, it's Shawn Mendes' birthday. He's a singer-songwriter. He gained a following in 2013 when he posted song covers on the video-sharing platform Vine. He's known for singles such as Stitches, Treat You Better, There's Nothing Holding Me Back, and also Senorita.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षता और शगुन को. परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की. अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट newsonair.com पर.
थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन. नमस्कार.